एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लेखक की जिनका नाम सुनते ही जहन में बड़े बड़े उपन्यास और गहरे विचार कौंध जाते हैं, काउंट लेव निकोलाइविच टॉल्स्टॉय।
हाँ बिल्कुल,
रूसी साहित्य के एक महारथी जिनकी सोच कह सकते हैं दुनिया भर में गूंजती है।
बिल्कुल। और टॉल्स्टॉय सिर्फ एक कहानीकार नहीं थे,
बिल्कुल,
वो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपनी जिंदगी और अपनी लेखनी से आप कह सकते हैं दुनिया को झकझोर दिया। और सोचिए, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों ने उनसे प्रेरणा ली। उनका जीवन भी किसी उपन्यास से कम नहीं था। 1828 में जन्म, रूस की अपने पुश्तैनी जमीन यास्नाया पोलियाना में,
यास्नाया पोलियाना,
और 1910 में 82 साल की उम्र में एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर देहांत।
तो आज इस बातचीत में हम टॉल्स्टॉय की इसी जिंदगी, उनकी जबरदस्त किताबें, उनके अनोखे विचारों और आज भी उनकी बातें क्यों मायने रखती हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल।
शुरुआत उस दौर से करते हैं जब टॉल्स्टॉय बड़े हो रहे थे। 19वीं सदी का रूस, वो कैसा माहौल था, मतलब क्या चल रहा था उस वक्त रूस में?
देखिए, वो रूस ना बड़ी उथल पुथल का दौर था। एक तरफ तो जार निकोलस प्रथम का बहुत ही सख्त दबदबे वाला शासन था।
अच्छा।
समाज भी अजीब तरह से बटा हुआ था। एक तरफ वो फ्रेंच बोलने वाले अमीर लोग, अभिजात वर्ग, और दूसरी तरफ जमीन से बंधे ज्यादातर अनपढ़ किसान जिन्हें सर्फ कहते थे।
सर्फ, हाँ।
उनके पास कोई खास अधिकार नहीं थे। और 1825 में एक विद्रोह हुआ था, डिसेंबरिस्ट विद्रोह जिसे कहते हैं।
हाँ, सुना है।
उसे बुरी तरह कुचल दिया गया था। तो उसके बाद तो राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा घुटन भरा हो गया था।
लेकिन इसी घुटन भरे माहौल में रूस का साहित्य फल फूल रहा था, है ना? कहते हैं वो रूसी साहित्य का सुनहरा दौर था।
हाँ, ये कमाल की बात है। साहित्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि समाज, राजनीति और जिंदगी के जो बड़े सवाल होते हैं, जिन्हें रूसी लेखक शापित प्रश्न कहते थे, उन पर खुलकर बहस करने का एक मंच बन गया था।
अच्छा, शापित प्रश्न।
हाँ, मतलब लोग कहानियों और कविताओं के जरिए अपने समय की सच्चाई बयान कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे।
और उस समय विचारों की दुनिया में भी काफी हलचल थी, वो वेस्टर्नाइजर्स और स्लावोफाइल्स वाली बहस, क्या था वो?
बिल्कुल, दो बड़ी सोच टकरा रही थी। वेस्टर्नाइजर्स मानते थे कि रूस को अगर तरक्की करनी है तो पश्चिमी यूरोप जैसा बनना होगा। वहीं स्लावोफाइल्स का मानना था कि नहीं, रूस का अपना अलग रास्ता है जो उसकी पुरानी परंपराओं और उसके धर्म, मतलब रूढ़िवादी ईसाई धर्म से जुड़ा है। टॉल्स्टॉय ने दोनों की बातें सुनी, समझी, पर आखिर में वो इन दोनों खेमों से आगे निकल गए। उन्होंने अपना ही अलग रास्ता बनाया।
उनके अपने जीवन पर कुछ बड़ी घटनाओं का भी जबरदस्त असर पड़ा होगा, जैसे क्रीमियन युद्ध का जिक्र आता है अक्सर।
हाँ बिल्कुल, क्रीमियन युद्ध 1853 से 1856 उनके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। वो एक तोपखाने के अफसर के तौर पर लड़े थे उसमें।
अच्छा, वो लड़े भी थे?
जी हाँ, और उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध की बेरहमी, सैनिकों की तकलीफें और सरकारी अफसरों की वो जो उदासीनता होती ना, लापरवाही, वो सब देखी। इसने युद्ध की शानो शौकत के जो उनके रोमांटिक ख्याल थे ना पहले, वो सब तोड़ दिए। उनके लिखने का अंदाज ही बदल गया इसके बाद, एकदम यथार्थवादी, सच्चा, खरा।
और दूसरी बड़ी घटना थी किसानों की आजादी 1861 में, उसका क्या असर हुआ?
सही कहा, किसानों की गुलामी जिसे सर्फडम कहते हैं, वो खत्म हुई। इस घटना ने उनकी सामाजिक चेतना को जगाया बहुत गहराई से। उन्हें हमेशा लगता था कि रूस की असली आत्मा, जो सच्ची नैतिकता है, वो इन किसानों में ही बसती है। और वो जिंदगी भर किसानों से जुड़े रहे। कभी कभी इस जुड़ाव में उन्हें बहुत दुख भी झेलना पड़ा, पर ये रिश्ता बना रहा।
तो युद्ध के अनुभव और किसानों से ये जुड़ाव, इन सब ने मिलके उनके विचारों को एक दिशा दी। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके बचपन और शुरुआती जिंदगी की तरफ। सुने, बड़े अमीर घर में पैदा हुए थे, पर बचपन आसान नहीं था शायद।
हाँ, यास्नाया पोलियाना में उनका जन्म हुआ, बेशुमार दौलत और सुविधाओं के बीच। लेकिन किस्मत देखिए, जब वो सिर्फ 2 साल के थे, उनकी माँ गुजर गई।
ओह, सिर्फ 2 साल के?
हाँ, और 9 साल की उम्र में पिता भी नहीं रहे, तो उनका पालन पोषण उनकी चाचियों ने किया। और बचपन में हुए इन हादसों की छाप उनकी लेखनी में बार बार दिखती है। यादें, परिवार का मतलब क्या है, जिंदगी के मायने की तलाश, ये सब उनके लेखन के बहुत जरूरी हिस्से बन गए।
और पढ़ाई लिखाई घर पर ही हुई या कहीं बाहर गए थे?
शुरुआती पढ़ाई तो घर पर ही हुई, फ्रेंच और जर्मन सिखाने वाले ट्यूटर्स आते थे। लेकिन उनका मन गांव के जीवन और वो जो किसानी संस्कृति थी उसमें ज्यादा रमता था। फिर वो कजान यूनिवर्सिटी गए, 1844 से 77 तक रहे शायद।
कजान यूनिवर्सिटी?
हाँ,
पर वहां भी मन नहीं लगा। पढ़ाई उन्हें उबाऊ लगी, दोस्तों के साथ घूमने फिरने सोशल लाइफ में ज्यादा मजा आता था, तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी।
अच्छा।
हाँ, और यहीं उनकी मुलाकात रूसों के विचारों से हुई, जिनका उन पर काफी गहरा असर पड़ा आगे चल के।
यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद क्या किया? सीधे लिखने लगे या कुछ और?
नहीं, अभी नहीं, पहले वो अपनी जागीर पर लौटे। सोचा कि खेती बाड़ी संभालेंगे, किसानों की हालत सुधारेंगे, पर उसमें कामयाब नहीं हुए। फिर एक दौर आया जब वो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की उस हाई सोसाइटी वाली जिंदगी में थोड़ा खो गए। खूब पार्टियां, जुआ खेलना, कर्जा भी हो गया। लेकिन इस सबके बीच भी एक चीज लगातार चलती रही उनकी, डायरी।
डायरी लिखते थे?
हाँ, रोज लिखते थे, अपनी कमजोरियों के बारे में, अपने विचारों के बारे में। खुद को समझने, खुद को बेहतर बनाने की एक जिद उनमें हमेशा से थी, जो डायरी में साफ दिखती है।
और इसी उथल पुथल के बीच वो फौज में चले गए, क्यों?
वहां शायद थोड़ी स्थिरता और अनुशासन की तलाश में। पहले कॉकेशस गए, फिर क्रीमियन युद्ध में सेवस्तोपोल पहुंचे। ये जो फौज का अनुभव था ना, ये उनकी जिंदगी की असली यूनिवर्सिटी साबित हुआ।
अच्छा, असली यूनिवर्सिटी।
हाँ, इसने उन्हें न सिर्फ लिखने के लिए बेशकीमती अनुभव दिए, बल्कि हमेशा के लिए शांति का समर्थक यानी शांतिवादी बना दिया। युद्ध की असलियत देखकर उनका मोहभंग हो गया था पूरी तरह से।
तो युद्ध के मैदान से मिली सीख ने उन्हें लेखक बनने की राह दिखाई। अब आते हैं उनके सबसे बड़े योगदान पर, साहित्य, खासकर उपन्यास को उन्होंने कैसे बदला, क्या नया किया उन्होंने?
टॉल्स्टॉय ने उपन्यास के कैनवस को बहुत बहुत बड़ा कर दिया। उन्होंने दिखाया कि एक उपन्यास में इंसानी मन की गहरी परतें और इतिहास का विशाल फैलाव दोनों को एक साथ समेटा जा सकता है। उनका मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद तो कमाल का था।
मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, थोड़ा समझाइए इसे।
मतलब वो किरदारों के मन के अंदर इतने गहरे उतर जाते थे, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनके शक, उनके डर, ऐसा लगता था जैसे हम उनके दिमाग में ही घुस गए हों, उनकी चेतना की धारा को पढ़ रहे हों।
हाँ, वो इंटीरियर मोनोलॉग वाली तकनीक शायद, जहाँ किरदार के मन में जो कुछ चल रहा है वो सब जस का तस सामने आ जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तकनीक उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल की कि बाद में जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ जैसे बड़े लेखकों ने भी इसे अपनाया। और एक और बड़ी दिलचस्प तकनीक थी उनकी, ऑस्ट्रानैनी।
ऑस्ट्रानैनी, ये क्या है?
अपरिचितीकरण कह सकते हैं हिंदी में। ये थोड़ा मुश्किल सा शब्द है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है।
बताइए क्या मतलब है इसका, सुनने में तो काफी अकादमिक लग रहा है।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है जानी पहचानी चीजों को ऐसे दिखाना जैसे हम उन्हें पहली बार देख रहे हों, बिना किसी पहले से बनी हुई धारणा के।
अच्छा, जैसे?
जैसे वो युद्ध का वर्णन करते हैं तो किसी बड़े जनरल की नजर से नहीं, बल्कि एक आम घबराए हुए सिपाही की नजर से। या किसी ओपरा शो को ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई गांव की लड़की देख रही हो, जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब अजीब हरकतें क्यों हो रही हैं।
वाह।
इससे होता यह है कि हम उन चीजों को उनकी असलियत में देख पाते हैं, जिन पर हमने ध्यान देना ही बंद कर दिया था, जो हमारे लिए बिल्कुल आम हो गई थी।
वाह, ये तो वाकई नजरिया बदलने वाली बात है। और उनकी सबसे मशहूर किताब वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, उसे तो महाकाव्य कहा जाता है।
सही मायनों में महाकाव्य है वो। वॉर एंड पीस में उन्होंने निजी जिंदगी की कहानियों, प्यार, शादी, परिवार को इतिहास की बड़ी घटनाओं जैसे नेपोलियन का रूस पर हमला उसके साथ ऐसे गूंथ दिया है जैसे ये दोनों अलग हो ही नहीं। ये किताब सिर्फ कहानी नहीं है, ये इतिहास, किस्मत, इंसान की इच्छा शक्ति और ताकत के असली मतलब पर एक गहरा विचार भी है। इसमें बॉलरूम की रौनक भी है और जंग के मैदान की खौफनाक सच्चाई भी, सब कुछ है उसमें।
और इन सब के पीछे एक गहरी नैतिकता की तलाश हमेशा रहती थी, है ना?
मतलब एक मॉरल कंपस।
बिल्कुल।
टॉल्स्टॉय के लिए लिखना सिर्फ कलाकारी नहीं थी, वो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों से जूझने का एक तरीका था।
जी।
विश्वास क्या है, मौत का मतलब क्या है, न्याय कैसे मिले,
जी,
प्यार क्या है। उन्होंने उपन्यास को सच और नैतिकता की खोज का एक जरिया बना दिया, एक बहुत ऊंचा मंच।
लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने लिखना ही छोड़ दिया, बल्कि अपने महान उपन्यासों को ही नकार दिया। वो आध्यात्मिक संकट क्या था, ये कैसे हुआ?
हाँ, ये बहुत नाटकीय मोड़ था उनकी जिंदगी का। 19वीं सदी के आखिर में वो जिंदगी के मतलब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए।
अच्छा।
सवाल उठने लगे उनके मन में, मैं क्यों जी रहा हूँ, मरने के बाद क्या होगा, ऐसे सवाल उन्हें सोने नहीं देते थे। इस गहरे संकट से गुजरने के बाद उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। एक तरह का धार्मिक और नैतिक रूपांतरण हुआ उनमें। और तब उन्हें लगा कि उनके बड़े बड़े उपन्यास, वॉर एंड पीस, अन्ना कैरेनिना, ये सब तो बेकार की चीजें थीं, व्यर्थ थीं। असल जिंदगी के सवालों का जवाब इनमें नहीं है, ऐसा वो मानने लगे।
ये तो चौंकाने वाली बात है, मतलब अपने ही मास्टरपीस को नकार देना। तो इस बदलाव के बाद उनका दर्शन क्या बना? किस तरह की बातें करने लगे वो?
उन्होंने ईसाई धर्म की एक अपनी एक अलग बहुत रैडिकल बहुत सख्त व्याख्या तैयार की। ये ईसा मसीह के पहाड़ी उपदेश पर आधारित थी।
पहाड़ी उपदेश?
हाँ, इसमें जोर था किसी भी तरह की हिंसा का विरोध, मतलब अहिंसक प्रतिरोध, सादा जीवन जीना, मेहनत मजदूरी करना, किसी चीज का मोह न रखना, तपस्या। उन्होंने दौलत और निजी जायदाद की कड़ी निंदा की, यहाँ तक कि सरकार और संगठित चर्च को भी मानने से इनकार कर दिया।
अरे बाप रे, काफी रैडिकल।
बहुत ज्यादा।
और कला के बारे में भी उनके विचार बदल गए फिर तो?
बिल्कुल। उन्होंने एक निबंध लिखा, कला क्या है, 1897, जिसमें उन्होंने कहा कि असली कला वो है जो सच्ची भावना जगाए और इंसानों को एक दूसरे के करीब लाए, भाईचारा बढ़ाए। सिर्फ अमीर लोगों का मन बहलाने वाली कला उनके हिसाब से बेकार थी। और इतिहास के बारे में भी उनका नजरिया साफ था, जैसा वॉर एंड पीस में भी दिखता है। इतिहास कोई महान आदमी नहीं बनाता, बल्कि अनगिनत छोटे छोटे लोगों के काम और बहुत सी अनदेखी ताकतें मिलकर बनाती हैं। धैर्य और समय सबसे बड़े योद्धा हैं, ये उनका मानना था।
चलिए अब उनकी कुछ खास किताबों पर थोड़ी और बात करते हैं। उनकी शुरुआती आत्मकथात्मक किताबें कौन सी थीं? बचपन?
हाँ, उन्होंने एक त्रयी लिखी थी, तीन किताबें जो उनके अपने बचपन और जवानी पर आधारित थीं। बचपन 1852, लड़कपन 1854 और युवावस्था 1856। इनमें एक बच्चे के बड़े होने, दुनिया को समझने और अपनी मासूमियत खोने की कहानी बड़े प्यारे ढंग से कही गई है। उनकी वो जो मनोवैज्ञानिक पकड़ है ना, वो यहाँ भी दिखती है।
और क्रीमियन युद्ध के अनुभव पर आधारित सेवेस्टोपोल स्केचेस, वो कैसी थी?
ये किताब युद्ध के बारे में लिखने के तरीके में एक मील का पत्थर है, समझिए। इसमें कोई बहादुरी का बखान नहीं है, बल्कि आम सिपाहियों की नज़र से युद्ध की गंदगी, डर और उलझन को दिखाया गया है। इसने युद्ध की सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया, वो झूठी शानो शौकत हटा दी।
फिर आते हैं उनके दो सबसे बड़े उपन्यास जिनके बारे में हमने थोड़ी बात की, वॉर एंड पीस। एक बार फिर से बताएं क्या खास है इसमें?
हाँ, वॉर एंड पीस नेपोलियन के समय के रूसी समाज का एक जीता जागता विशाल चित्र है। पांच अमीर परिवारों की कई पीढ़ियों की कहानी जो युद्ध और शांति के दौर से गुजरते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास और जिंदगी के मतलब पर एक गहरा चिंतन भी है। बहुत बड़ा कैनवस है इसका।
और अन्ना कैरेनिना, जिसे बहुत से लोग दुनिया का सबसे बेहतरीन उपन्यास मानते हैं, क्यों?
अन्ना कैरेनिना 1878, तो इंसानी रिश्तों और मन की गहराइयों को समझने की एक अद्भुत मिसाल है। इसकी बनावट भी खास है। एक तरफ अन्ना की दुख भरी प्रेम कहानी है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता और वो अंत में तबाह हो जाती है। दूसरी तरफ है लेविन नाम का किरदार, जो काफी कुछ खुद टॉल्स्टॉय जैसा है, जो गांव में खेती करता है, परिवार बसाता है और लगातार जिंदगी के मायने ढूंढने की कोशिश करता रहता है। इन दो कहानियों के जरिए टॉल्स्टॉय ने उस समय के समाज, प्यार, शादी, विश्वास और पाखंड पर जबरदस्त टिप्पणी की है। मनोवैज्ञानिक गहराई तो कमाल की है ही।
और उनके विचारों में बदलाव आने के बाद की कौन सी रचनाएं अहम हैं? आपने कन्फेशन का जिक्र किया था।
हाँ, कन्फेशन, स्वीकारोक्ति, 1882 नाम की किताब में उन्होंने अपने उस गहरे आध्यात्मिक संकट के बारे में पूरी ईमानदारी से लिखा है। बहुत पर्सनल किताब है वो। फिर एक छोटा उपन्यास है, इवान इलिच की मृत्यु, 1886, जो बहुत असरदार है।
हाँ, ये मैंने पढ़ी है, कमाल की
है ना। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो मरते समय महसूस करता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी झूठी दिखावटी चीजों में बर्बाद कर दी। और क्रेउत्ज़र सोनाटा 1889 में उन्होंने शादी और सेक्स को लेकर इतने तीखे सवाल उठाए कि उस समय के लोग चौंक गए थे, बहुत विवाद हुआ था।
और उनका आखिरी बड़ा उपन्यास पुनरुत्थान।
पुनरुत्थान 1899 समाज के अन्याय, सरकार और चर्च के ढोंग पर एक सीधा हमला है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपने पुराने गुनाह का प्रायश्चित करने और एक औरत को इंसाफ दिलाने निकलता है। इसमें वो दिखाते हैं कि सच्ची मुक्ति दूसरों की भलाई करने और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में है। शायद कला के नजरिए से ये वॉर एंड पीस या अन्ना कैरिना जितनी कसी हुई ना हो, पर इसमें उनकी नैतिक आग जबरदस्त है।
उस जमाने में और भी बड़े लेखक थे रूस में, इवान तुर्गेनेव और फ्योदोर दोस्तोयेवस्की के साथ टॉल्स्टॉय के रिश्ते कैसे थे? क्या वो मिलते थे?
तुर्गेनेव के साथ उनका रिश्ता बड़ा अजीब था, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी। दोनों एक दूसरे का सम्मान तो करते थे, पर कला और राजनीति पर उनके विचार इतने अलग थे कि एक बार तो नौबत हाथापाई और ड्यूल मतलब द्वंद्व युद्ध की चुनौती तक पहुंच गई थी।
अरे, ड्यूल?
हाँ, खैर वो हुआ नहीं। और दोस्तोयेवस्की, वो भी उतने ही बड़े लेखक थे, पर कमाल की बात है कि ये दोनों दिग्गज कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं।
सच में कभी नहीं?
कभी नहीं। दोनों ही इंसानी मन की गहराइयों और विश्वास के सवालों में डूबे रहते थे, पर उनके रास्ते और अंदाज बिल्कुल अलग थे।
अब बात करते हैं टॉल्स्टॉय की विरासत की। आज वो हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं? ऐसा लगता है उनकी दो पहचानें हैं, है ना? एक लेखक की और एक विचारक की।
बिल्कुल, यही उनकी खासियत भी है और जटिलता भी। एक तरफ वो दुनिया के महानतम उपन्यासकारों में से हैं जिनकी कहानियां आज भी हमें बांध लेती हैं, हमें इंसान होने का मतलब समझाती हैं। दूसरी तरफ वो एक ऐसे नैतिक और धार्मिक विचारक हैं जिनके विचारों ने दुनिया पर गहरा असर डाला, भले ही वो विचार बहुतों को विवादास्पद या अव्यवहारिक लगते हों। अपनी जिंदगी में ही वो इतने मशहूर और सम्मानित हो गए थे कि लोग उन्हें दूसरा ज़ार कहने लगे थे।
दूसरा ज़ार?
हाँ, मतलब एक ऐसा आदमी जिसका नैतिक कद सरकार और चर्च, जिसने उन्हें 1901 में धर्म से निकाल दिया था, से भी ऊंचा माना जाता था।
सोवियत रूस में उनके लेखन को कैसे देखा गया, क्योंकि वो तो ज़ार के आलोचक थे?
हाँ, उन्हें इस बात के लिए तो सराहा गया कि उन्होंने ज़ार के शासन की आलोचना की थी, लेकिन उनके जो धार्मिक और सरकार विरोधी, मतलब अराजकतावादी विचार थे, उन्हें व्यवस्थित रूप से दबा दिया गया। वो फिट नहीं होते थे सोवियत विचारधारा में।
अच्छा, और पश्चिम में उनका साहित्यिक असर कैसा रहा?
पश्चिम में उनका साहित्यिक असर बहुत जबरदस्त हुआ, बहुत से बड़े लेखकों पर। मार्सेल प्रूस्ट, थॉमस मान, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर जैसे लेखकों ने उनसे किरदारों के मन को समझने, बड़ी एपिक कहानियां कहने और युद्ध के बारे में लिखने का हुनर सीखा। वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस जैसे आधुनिक लेखकों ने उनकी मनोवैज्ञानिक गहराई से प्रेरणा ली, मतलब मॉडर्न नॉवल पर उनका असर बहुत गहरा है।
और उनके विचारों का असर? गांधी और किंग का जिक्र हमने शुरू में किया था।
हाँ, उनकी किताब ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, अहिंसक प्रतिरोध का एक तरह से घोषणा पत्र बन गई। महात्मा गांधी ने इसे पढ़ा और बहुत ज्यादा प्रभावित हुए।
हाँ, उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म भी बनाया था।
बिल्कुल, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने फार्म का नाम ही टॉल्स्टॉय फार्म रखा था और टॉल्स्टॉय से चिट्ठी पत्री भी की थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी साफ तौर पर माना कि उनके अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा में टॉल्स्टॉय का बड़ा हाथ था, सविनय अवज्ञा का विचार।
तो आज के जमाने में जब दुनिया इतनी बदल गई है, टॉल्स्टॉय को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्या मिलता है हमें उनसे?
क्योंकि वो जिंदगी के उन बुनियादी सार्वभौमिक सवालों से टकराते हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते, प्यार, मौत, परिवार, जिंदगी का मतलब, और वो इन सवालों का सामना बड़ी ईमानदारी, बौद्धिक कठोरता और भावनात्मक गहराई से करते हैं। आज की भागदौड़ और सतहीपन की दुनिया में उनके उपन्यास हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। वो हमें जिंदगी की उलझनों और उसकी खूबसूरती को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करते हैं। यहां तक कि मनोविज्ञान और झगड़े सुलझाने, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे क्षेत्रों में भी उनके विचारों की अहमियत आज भी महसूस की जाती है।
उनकी कुछ मशहूर कथन भी है जो आज तक दोहराए जाते हैं। अन्ना कैरेनिना की पहली लाइन तो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है ना?
हाँ, बिल्कुल। सारे सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है। ये एक लाइन ही बता देती है कि उपन्यास किस तरह पारिवारिक जीवन की उलझनों और अंदरूनी तकलीफों पर ध्यान देगा। हर दुख अपने आप में अनोखा होता है।
और सच को स्वीकार करने के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था जो आपने पहले बताया, वो दोहराएंगे प्लीज?
हाँ, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है में एक बहुत पते की बात कही है, सबसे मुश्किल बात भी सबसे कम समझदार आदमी को समझाई जा सकती है अगर उसने उसके बारे में पहले से कोई राय नहीं बनाई है, लेकिन सबसे सीधी सादी बात भी सबसे बुद्धिमान आदमी को नहीं समझाई जा सकती अगर वो पक्का मान बैठा है कि जो उसे बताया जा रहा है वो उसे पहले से ही बिना किसी शक के पता है।
वाह, मतलब दिमाग खुला रखना कितना जरूरी है।
बिल्कुल, ये स्थापित हरधर्मिता की आलोचना है और वॉर एंड पीस से वो धैर्य और समय वाली बात भी बहुत मशहूर है।
हाँ, वो क्या थी?
दो सबसे ताकतवर योद्धा हैं धैर्य और समय। ये एक तरह से उनके इतिहास के फलसफे का निचोड़ है। वो मानते थे कि बड़ी बड़ी जीतें किसी एक महान आदमी की अचानक की गई कार्रवाई से नहीं, बल्कि धीरज रखने और सही वक्त का इंतजार करने से मिलती हैं। नेपोलियन के खिलाफ रूस की जीत का वो यही सार बताते हैं।
उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं। नोबेल पुरस्कार वाला मामला क्या था, उन्हें मिला क्यों नहीं?
हाँ, ये बड़ा अनोखा किस्सा है। उन्हें कई साल 1902 से 1906 नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया और सब मानते थे कि वही सबसे ज्यादा हकदार हैं, लेकिन 1906 में उन्होंने खुद अकेडमी को लिखवा भेजा कि भैया मुझे प्राइज मत देना।
खुद क्यों?
वजह, वो मानते थे कि पैसा लेना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि वो तो दौलत और निजी संपत्ति की निंदा करते थे, तो प्राइज मनी लेना उनके लिए नैतिक रूप से गलत होता। जब उन्हें प्राइज नहीं मिला तो दुनिया भर में बहस छिड़ गई थी। ये उनके बाद के सालों की कट्टरता को भी दिखाता है।
वाकई अपने सिद्धांतों पर इतने पक्के और चर्च ने उन्हें निकाल दिया था, ये भी बड़ी बात थी उस समय।
हाँ, 1901 में रूसी रूढ़िवादी चर्च ने उन्हें धर्म से बहिष्कृत कर दिया क्योंकि उनके विचार चर्च की स्थापित मान्यताओं से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। पर इस घटना ने दुनिया भर में उन्हें एक निडर, सच बोलने वाले के तौर पर और मशहूर कर दिया। लोगों की नज़र में उनका कद और बढ़ गया।
उनकी जिंदगी का अंत भी काफी दुखद और नाटकीय रहा है ना, घर से भाग जाना।
बहुत। 82 साल की उम्र में मन की शांति की तलाश में वो अचानक अपना घर बार, अपनी पत्नी, परिवार सब छोड़कर निकल पड़े। रास्ते में बीमार हो गए और एक छोटे से अनजान रेलवे स्टेशन, अस्तापोवो नाम था उसका।
अस्तापोवो?
हाँ, वहां स्टेशन मास्टर के छोटे से घर में निमोनिया सुन की मौत हो गई। उनका ये आखिरी सफर और मौत पूरी दुनिया के लिए खबर, एक तमाशा बन गई। उनकी पत्नी सोफिया के साथ भी उनके रिश्ते आखिर में काफी तनाव भरे हो गए थे।
क्यों?
खासकर जब टॉल्स्टॉय ने अपनी जायदाद और अपनी किताबों के कॉपीराइट छोड़ने का फैसला किया। सोफिया ने सालों तक उनकी वो बड़ी बड़ी किताबों की पांडुलिपियां हाथ से लिखकर तैयार की थी, वॉर एंड पीस की शायद 7 बार। पर आखिर में विचारों का ये टकराव बहुत दुखदायी साबित हुआ पूरे परिवार के लिए।
ये तो दुखद है। तो आज की बातचीत के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। टॉल्स्टॉय अपनी जिंदगी में कला और नैतिकता के बीच एक कश्मकश महसूस करते रहे। क्या एक महान कलाकार के लिए जरूरी है कि वो समाज की भलाई के कामों में सीधे तौर पर लगे, या फिर कला रचने के लिए दुनिया से थोड़ा अलग थलग रहना बेहतर है?
हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और आज के इस दौर में जहाँ पैसे और चीज़ों की इतनी अहमियत है, दौलत और जायदाद पर टॉल्स्टॉय के जो रेडिकल विचार थे वो कितने प्रासंगिक लगते हैं, कितने काम के लगते हैं, इस पर हमारे श्रोता जरूर सोच सकते हैं।
बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ज्ञानोगोष्ठी समाप्त करते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।